एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हाल के समय में समकालीन साहित्य में अब कह सकते हैं काफी हलचल मचाई है।
केटी किताओरा का 2022 का उपन्यास ऑडिशन।
हाँ, केटी किताओरा, उनकी मतलब पृष्ठभूमि जापानी अमेरिकी है और उनका लिखन इंसानी रिश्तों की जो परतें हैं ना, उन्हें बड़ी बेबाकी से खोलता है।
बिल्कुल, खासकर शादीशुदा जिंदगी की दरारें, उलझने, उनको पकड़ने में वो माहिर हैं। और उनकी शैली, वो मिनिमलिस्ट प्रोज जिसे कहते हैं,
संयमित गद्य, कम शब्दों में गहरा असर।
हाँ वही, और अक्सर किरदार बिना नाम के होते हैं जो एक अलग ही खिंचाव पैदा करता है।
सही, ऑडिशन उस समय आया जब महिलाओं की आज़ादी, उनकी कलात्मक महत्वाकांक्षाएं और ये जो रचनात्मक साझेदारियां होती है ना,
हाँ,
उनकी जटिलताओं पर काफी बात हो रही थी। समीक्षकों ने भी इसे बहुत सराहा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस उपन्यास के ताने बाने को थोड़ा खोलें, इसकी कहानी, किरदारों का सफर और वो बड़े सवाल जो ये हमारे सामने रखता है, उन पर बात करें।
बिल्कुल, और ये कहानी हमें ले जाती है एक्सपेरिमेंटल थिएटर की दुनिया में, जो थोड़ी कह सकते हैं दमघोटू भी है और दिखावती भी।
अच्छा,
माहौल ऐसा है कि कला के बड़े बड़े दावों के पीछे शायद जिंदगियां पिस रही हैं, और इसी माहौल में एक अधेड़ पति पत्नी का रिश्ता, वो बिखर रहा है कलात्मक नाकामी और आडंबर के बीच।
तो किरदार कौन कौन है इसमें मुख्य?
देखिए, कहानी की सूत्रधार, जो मुख्य पात्र भी है, वो एक महिला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसका नाम हमें कभी पता नहीं चलता।
ओह अच्छा, सिर्फ पत्नी?
हाँ बस पत्नी। उसका पति एक थिएटर निर्देशक है और उसका अपनी ही थिएटर कंपनी की एक युवा उभरती हुई अभिनेत्री के साथ नजदीकियां हैं, अफेयर है। और कहानी में भूचाल तब आता है जब ये युवा अभिनेत्री अचानक गायब हो जाती है, कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं,
रहस्यमय तरीके से। और यहीं पे किताओरा एक ऐसा मोड़ लाती हैं जो सच कहूं तो थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है ना।
हाँ बिल्कुल,
पति अपनी पत्नी को,
हाँ,
उसी पत्नी को जिसका दिल उसने तोड़ा है, उसे मना लेता है कि वो आने वाले नाटक में उस गायब अभिनेत्री की भूमिका निभाए।
सोचिए जरा, ये एक मनोवैज्ञानिक गांठ है। आपको उसी इंसान का किरदार निभाना है जिसने आपकी शादी, आपकी दुनिया तबाह कर दी।
यही उपन्यास का दिल है शायद।
हाँ,
यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि क्या आप मंच के किरदार को अपनी असल जिंदगी की सच्चाई से अलग रख सकते हैं।
सही कहा, क्या किसी और की पहचान ओढ़कर आप खुद को ज्यादा जान पाते हैं या फिर अपना बचा खुचा वजूद भी गवा देते हैं? तो हमारी कथावाचक फंसी हुई है, एक तरफ बदले की इच्छा है, दूसरी तरफ अपनी दबी हुई कलात्मकता को शायद जाहिर करने की तलब।
और पति और उस लापता लड़की के लिए भी तो मिलीजुली भावनाएं होंगी।
बिल्कुल, बहुत उलझी हुई भावनाएं, ये एक अजीब सी कश्मकश है उसके अंदर।
चक, उसका नाम न होना ही कितना कुछ कहता है।
हाँ, जैसे उसकी अपनी पहचान वो पति की पत्नी होने में ही कहीं घुल मिल गई हो।
बिल्कुल,
वो चीजों को बहुत बारीकी से देखती है, ये पता चलता है, लोगों के बीच संभल कर रहती है और पति का धोखा उससे चुपचाप सहती है।
हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है जैसे उसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया है।
बिल्कुल,
लेकिन धीरे धीरे कहानी जैसे आगे बढ़ती है, उसकी पैनी नजर, उसकी समझदारी और उसकी एक खामोश ताकत है, वो उभरती है।
और शायद ये भूमिका स्वीकार करना, ये उसी छुपी हुई ताकत की तरफ उसका पहला कदम है।
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी तरफ ये पति है, थिएटर निर्देशक, ये कैसा पात्र है, खलनायक कहें से?
खलनायक तो है एक तरह से, पर शायद थोड़ा दुखद भी। उसका आर्टिस्टिक विजन, वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है, निजी जिंदगी तो बिखरी ही हुई है।
मतलब वो जोड़ तोड़ करने वाला लगता है।
हाँ लगता तो है, शायद वो पला की आड़ में लोगों को इस्तेमाल करना उसे ही अपनी कलात्मक दृष्टि समझ बैठा है। उसका अगर पूरा सफर देखें कहानी में, तो धीरे धीरे कला और रिश्ते दोनों पर से उसका नियंत्रण वो खोता जाता है।
पत्नी और उस अभिनेत्री दोनों के प्रति उसका रवैया शोषक लगता है।
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहा है।
और फिर वो लापता अभिनेत्री, ये भी कमाल है कि वो शारीरिक रूप से गायब हैं,
पर कहानी पर पूरी तरह छाई हुई है।
हाँ,
वो एक तरह से पीड़ित भी है और कहानी को आगे बढ़ाने वाली चिंगारी भी।
सही,
उसका गायब होना उपन्यास का केंद्रीय रहस्य तो है, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि उसकी गैर मौजूदगी वो हमारी कथावाचक को एक मंच देती है, एक ऐसा मंच जहां वो शायद खुद को तलाश सकती है।
वो लड़की शायद जवानी, महत्वाकांक्षा, एक अलग तरह की बेबाकी, इन चीजों का प्रतीक है।
हो सकता है वो सब कुछ जो शायद कथावाचक ने अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ दिया है या दबा दिया है।
और इन तीनों के आपसी रिश्ते ये कहानी की भावनात्मक नींव रखते हैं।
बिल्कुल।
पति पत्नी के बीच जो शक्ति संतुलन है वो साफ तौर पर बिगड़ा हुआ है।
पति की कलात्मक पहचान, उसकी जरूरतें, वो पत्नी की इच्छाओं पर हावी हैं।
हाँ, और अफेयर सिर्फ एक जिस्मानी धोखा नहीं है, ये एक पैटर्न है भावनात्मक शोषण का भी।
और फिर कथावाचक का उस लापता अभिनेत्री से रिश्ता जो उसके किरदार को सीखते हुए बनता है, वो भी तो अजीब है।
बहुत अजीब, एक अजीब सी आप कह सकती हैं अंतरंगता पनपती है। जैसे वो उस दूसरी औरत के जरिए अपने ही दबे हुए पहलुओं को छू रही हूँ, उन्हें समझ रही हूँ। कितामुरा ने रिश्तों का यह जाल बहुत बहुत उलझा हुआ और सच्चा बुना है।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है, शुरुआत में क्या माहौल है?
शुरुआत में तो एक टूटी फूटी सी सामान्य जिंदगी दिखती है। पति के अफेयर की फुसफुसाहटें हैं हवा में, जिसे कथावाचक शायद अनदेखा करने की कोशिश कर रही है।
और थिएटर कंपनी का वो दिखावापन,
हाँ, वो उनके अपने रिश्ते की खोखली होती बुनियाद का जैसे आईना। और फिर वो पल आता है जब अफेयर का सच सामने आता है। ये पहला महत्वपूर्ण मोड़ है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन कितामुरा इसे बहुत नाटकीय ढंग से नहीं दिखाती। कोई चीखना चिल्लाना, हंगामा नहीं।
अच्छा,
उनका ध्यान कथावाचक के अंदर जो चल रहा है उस पर है, उसकी खामोश प्रतिक्रिया पर।
और पति का रवैया, इनकार या सफाई?
वही, इनकार, बहानेबाजी, उसकी गैरजिम्मेदाराना फितरत सामने आती है। ये सब बहुत सधे हुए तरीके से परत दर परत खुलता है।
इसके बाद ही अभिनेत्री गायब होती है।
हाँ, इसके ठीक बाद दूसरा बड़ा मोड़। ये एक नया संकट है, पर जैसा हमने कहा, कथावाचक के लिए एक मौका भी।
और पति का वो सुझाव कि पत्नी ही वो भूमिका निभाए, वो इस मौके को एक ठोस शक्ल दे देता है।
बिल्कुल, एक दुस्साहसी, लगभग बेरहम सुझाव।
और यहीं से वो असल ऑडिशन प्रक्रिया शुरू होती है, जो सिर्फ नाटक के लिए नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसकी अपनी जिंदगी, अपनी पहचान का ऑडिशन बन जाता है। वो रिहर्सल की वीडियो देखती है, डायलॉग याद करती है, उस लड़की के हाव भाव, अंदाज, सब कुछ आत्मसात करने की कोशिश करती है।
और ऐसा करते हुए वो सिर्फ किरदार को नहीं जान रही,
वो उस लापता लड़की की जिंदगी को भी समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक बेचारी शिकार नहीं थी, उसका अपना भी एक जटिल व्यक्तित्व था।
तो ये पूरी प्रक्रिया उसके लिए एक आत्मखोज की यात्रा बन जाती है।
हाँ बिल्कुल, एक जगह वो सोचती भी है, उसके संवाद सीखते हुए मैं फिर से बोलना सीख रही थी।
ओह, कितनी गहरी बात है ये।
जैसे वो अपनी खोई हुई आवाज,
अपनी आवाज वापस पा रही हो
उस किरदार के जरिए।
कमाल है। और रिहर्सल के दौरान क्या होता है, पति पत्नी के बीच की गतिशीलता बदलती है?
हाँ बदलती है, मंच पर भी और मंच के बाहर भी। जैसे जैसे पत्नी किरदार में उतरती जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी आवाज थोड़ी बुलंद होती है।
अच्छा।
और ये बदलाव उनके आपसी रिश्ते में भी दिखता है। अब पति अपनी पत्नी को उस किरदार में ढाल रहा है जो उसने अपनी प्रेमिका के लिए सोचा था।
ये तो बहुत ही अजीब और तनावपूर्ण स्थिति होगी।
बेहद। पेशेवर और निजी जिंदगी की रेखाएं एकदम धुंधली पड़ जाती हैं। थिएटर कंपनी के जो बाकी लोग हैं वो भी इस अजीब तमाशे को देखकर असहज हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है।
तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस का दिन नजदीक आता है, तनाव बढ़ता जाता होगा।
बहुत ज्यादा। कथावाचक के मन में अब कई सवाल हैं कि वो ये सब क्यों कर रही है, उसका असली मकसद क्या है, बदला, कला या खुद को पाना।
और उस लापता अभिनेत्री की मौजूदगी वो और घनी होती जाती होगी।
हाँ, अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, सवाल ये भी बन जाता है कि कथावाचक खुद अपने लिए क्या चाहती है, उसका अपना अंत क्या होगा।
और फिर आता है क्लाइमैक्स, परफॉर्मेंस का दिन।
हाँ, सारे तनाव, सारे अनकहे सवाल, सब मंच पर आकर जैसे सिमट जाते हैं। जब कथावाचक मंच पर उतरती है तो वो क्या है? क्या वो पति के आर्टिस्टिक विजन के आगे एक तरह का अंतिम समर्पण है,
या फिर अपनी आजादी का एक ताकतवर ऐलान?
बिल्कुल। और दर्शक, जिनमें से कई लोग उनकी निजी जिंदगी के इस पूरे ड्रामे से वाकिफ हैं, वो भी इस खेल का, इस तमाशे का हिस्सा बन जाते हैं। ये परफॉर्मेंस कला और शोषण, अभिनय और हकीकत, इनके बीच की महीन रेखाओं को और भी ज्यादा धुंधला कर देता है।
ये उपन्यास वाकई कई गहरे मुद्दों को छूता है। सबसे अहम शायद ये प्रदर्शन और प्रामाणिकता का सवाल है कि हम कब अभिनय कर रहे होते हैं और कब असल होते हैं।
हाँ, कितामुरा जैसे हमें आईना दिखाती हैं, क्या हमारी अपनी जिंदगियां भी एक लंबा चलने वाला ऑडिशन है?
बिल्कुल। हम निजी जिंदगी में कितने किरदार निभाते हैं, पत्नी का, साथी का, माँ का, दोस्त का, और कैसे ये किरदार कभी कभी हमारे असली स्व को ढक लेते हैं।
और यहाँ तो कथावाचक का पति के नाटक में शाब्दिक प्रदर्शन, वो उसके अपने विवाह और समाज की उम्मीदों के तहत जो प्रदर्शन वो करती आई है उसका एक जबरदस्त प्रतीक बन जाता है।
क्या किसी दूसरे का मुखौटा पहनकर सच सामने आ सकता है? ये सवाल उठता है। शायद वो जो सोचती है, मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने लंबे समय से पत्नी की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रही थी कि मैं भूल गई थी कि अन्य भूमिकाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं।
हाँ, ये पंक्ति बहुत कुछ कहती है और इसी से जुड़ा है ताकत के संतुलन और शोषण का मुद्दा।
ये सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं है।
नहीं, थिएटर कंपनी में भी यह दिखता है, कैसे कलात्मकता या ऊंचे विजन का हवाला देकर लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कला से नैतिकता हटा दी जाए तो वो सिर्फ चालाकी बन जाती है।
पति का किरदार यही दिखाता है। क्या कला किसी भी तरह के शोषण को जायज ठहरा सकती है? ये उपन्यास सोचने पर मजबूर करता है।
पहचान और आत्मखोज का सफर भी बहुत अहम है। कथावाचक एक खामोश दर्शक से अपने जीवन की कहानी में एक सक्रिय किरदार बनती है।
उसका कोई नाम न होना, ये पहचान के खो जाने का प्रतीक है।
हाँ, और विडंबना देखिए, किसी और का किरदार निभाते हुए वो अपने भूले बिसरे हिस्सों से दोबारा जुड़ती है। वो पंक्ति फिर याद आती है, उसके संवाद सीखते हुए मैं फिर से बोलना सीख रही थी। जैसे वो किरदार उसे उसकी आवाज वापस दिला रहा है। तो क्या वाकई हम किसी और का मुखौटा पहनकर खुद को बेहतर जान सकते हैं? ये एक जटिल सवाल है।
कोई आसान जवाब नहीं है इसका।
बिल्कुल नहीं। फिर कला और नैतिक जिम्मेदारी का सवाल भी है। क्या कला बनाने की प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज किया जा सकता है?
क्या एक महान कलाकृति बनाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना सही है? पति का किरदार दिखाता है कि बिना नैतिकता के कला शायद कितनी भी महत्वाकांक्षी क्यों ना हो, अंदर से खोखली ही रह जाती है।
हाँ, वो सिर्फ एक बाहरी खोल है, एक प्रदर्शन मात्र।
विवाह और विश्वासघात की परतें भी उपन्यास खोलता है, और ये सिर्फ बेवफाई की कहानी नहीं है।
नहीं, ये उन छोटे छोटे रोजमर्रा के विश्वासघातों की भी बात करता है, जब एक साथी लगातार अपनी जरूरतों को दूसरे पर थोपता है, जब सहारा देना शोषण बन जाता है,
जब प्यार भी एक तरह का अभिनय लगने लगता है, जैसे शादी खुद ही एक मंच हो जहां दोनों साथी अपने अपने किरदार निभा रहे हैं।
हाँ, और आखिर में स्त्री स्वर और स्वतंत्रता का मुद्दा। कथावाचक की यात्रा खामोशी से शुरू होकर मंच पर प्रदर्शन तक पहुंचती है,
और शायद इसी प्रदर्शन के जरिए वो अपनी आवाज पाती है। यह अजीब है कि उसे अपनी आवाज उस दूसरी औरत का किरदार निभाकर मिलती है।
बिल्कुल, ये उन सामाजिक ढांचों पर भी एक टिप्पणी है जो अक्सर महिलाओं को दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पीछे धकेल देते हैं।
और इन ढांचों के भीतर रहते हुए अपनी असली पहचान खोजना कितना मुश्किल हो सकता है, ये उपन्यास दिखाता है।
हाँ, जैसे कथावाचक खुद महसूस करती है, मैंने खुद को उस तरह से उपयोगी बनाना सीख लिया था जैसे महिलाओं को उपयोगी होना सिखाया जाता है, यानी दूसरों के लिए आवश्यक होते हुए खुद के लिए अदृश्य रहना। ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं।
कितामुरा के लिखने की शैली भी इन विषयों को उभारने में बहुत मदद करती है। कहानी पहले पुरुष में है, वो भी एक अनाम किरदार के जरिए।
हाँ, इससे हम सीधे उसके दिमाग में, उसकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये एक करीबी का एहसास भी देता है और कभी कभी घुटन का भी।
और उनका गद्य सदावा नपातुला, कम शब्दों में ज्यादा कहना,
वो बड़े ड्रामाई पलों की बजाय छोटी छोटी डिटेल्स, अंदरूनी सोच, खामोशियां, इन पर ध्यान देती हैं जिनसे गहरी भावनात्मक सच्चाइयां खुलती हैं। ये पढ़ने वाले को बहुत ध्यान से सुनने समझने पर मजबूर करता है।
हाँ, और उपन्यास का ढांचा भी प्रदर्शन और असलियत के खेल को ही दिखाता है। जानकारी धीरे धीरे सामने आती है, इशारों में, छुपी हुई बातों में।
और प्रतीक, वो भी बहुत सशक्त है। थिएटर खुद ही सार्वजनिक और निजी चेहरे का प्रतीक है।
लापता अभिनेत्री, दबी हुई इच्छाओं का।
हाँ, और किरदार निभाना समर्पण भी हो सकता है और आजादी भी। और पूरा ऑडिशन तो जैसे जिंदगी के ही ऑडिशन का रूपक है।
रूपक और छवियां भी, प्रदर्शन दिखने छुपाने, देखने और देखे जाने, इसी गिर्द गिर्द घूमती हैं।
और विडंबना तो कहानी की रग रग में है। किसी और का मुखौटा पहनकर अपनी आवाज पाना, शोषण पर खड़ी की गई कला,
और किसी की गैर मौजूदगी का उसकी मौजूदगी से ज्यादा ताकतवर हो जाना।
उपन्यास में समय का तानावाना भी दिलचस्प है। कहानी वर्तमान और यादों के बीच झूलती रहती है।
किरदार को निभाना कथावाचक को अतीत की भूली हुई चीजों की याद दिलाता है।
हाँ, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, वो अपने उन हिस्सों से फिर जुड़ पाती है जिन्हें शायद शादी ने कहीं धुंधला कर दिया था। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये मन की गहराइयों में उतरना है।
अरे, भावनात्मक असर की बात करें तो ऑडिशन कैसा असर छोड़ता है?
ये
ये एक गहरा धीरे धीरे रिसने वाला असर छोड़ता है। ये दबी हुई भावनाओं, अनकहे तनावों, रिश्तों की जटिलताओं का बहुत बहुत बारीकी से किया गया विश्लेषण है।
इसकी ताकत बड़े खुलासों में नहीं है।
नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता के उन खामोश पलों में है। पाठक कथावाचक की स्थिति से आसानी से जुड़ पाते हैं। रिश्तों में धीरे धीरे अपनी पहचान खो देना, उम्मीदों का बोझ और उन कारणों को समझना जिनकी वजह से लोग मुश्किल रिश्तों में भी फंसे रह जाते हैं।
इसका स्थायी प्रभाव कहानी खत्म होने के बाद भी रहता है, मुझे लगता है। ये हमें अपनी जिंदगी में निभाए जा रहे किरदारों पर सोचने को मजबूर करता है।
बिल्कुल, ये शादी की जो रोमांटिक धारणाएं हैं ना, उन्हें चुनौती देता है, खासकर वो जहां एक साथी से खुद को पूरी तरह मिटा देने की उम्मीद की जाती है।
ये दिखाता है कि एक स्वस्थ रिश्ते के लिए अपनी पहचान बनाए रखना कितना जरूरी है।
और विश्वासघातकता चित्रण भी बहुत जटिल है। उपन्यास इशारा करता है कि कभी कभी छोटे छोटे भावनात्मक धोखे वो शायद जिस्मानी बेवफाई से भी ज्यादा जख्मी कर सकते हैं।
लापता अभिनेत्री हमें शोषण भरे रिश्तों के खतरों की याद दिलाती है।
तो वहीं कथावाचक उम्मीद जगाती है कि मुश्किल हालात में भी अपनी आजादी, अपनी आवाज वापस पाना मुमकिन है।
मेरे ख्याल से ये मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का एक बेहतरीन नमूना है। किताबमुरा एक उलझे हुए विवाह की कहानी के जरिए पहचान, ताकत और खुद को ईमानदारी से व्यक्त करने जैसे बड़े सार्वभौमिक सवालों को खंगालती हैं।
और समकालीन साहित्य में इसका योगदान यही है कि ये रचनात्मक साझेदारी और शादी के संदर्भ में महिलाओं की पहचान और उनकी आवाज को बहुत ही परिपक्व और सूक्ष्म तरीके से पेश करता है।
जो लोग रिश्तों के मनोविज्ञान, प्रदर्शन की प्रकृति और प्रामाणिकता की तलाश में रुचि रखते हैं, उनके लिए उपन्यास पढ़ना वाकई जरूरी है।
हाँ बिल्कुल,
ये कहानी हमें जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कब सचमुच जी रहे होते हैं
और कब सिर्फ एक किरदार निभा रहे होते हैं,
और ये भी कि कौन सा प्रदर्शन हमें खुद से मिलाता है
और कौन सा हमें खुद से ही दूर कर देता है। एक अहम सवाल है ये।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। या ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।